देखते हैं सूरा को। इस चीज को जहन में रख के भी आप सूरा को देखिएगा कि अब ये नजरान का वफद आया हुआ है और उसको किस तरह से उनके ऊपर इफेक्ट हो रही होंगी ये सूरतें, किस तरह से सूरत का ये पार्ट और किस तरह से हमने अपने लिए लेना है। क्योंकि शकु को शुभात डालने वाले, वसवास डालने वाले उस जमाने में भी थे और आगे भी रहेंगे, और आज तो ये फितना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जरूरी है कि इल्मे गैब जो है वो पुख्ता हो और पक्का हो हमारे अंदर। तो अल्लाह ताला की वहदानियत पे बहुत बात है यहाँ पे, अल्लाह ताला की सिफात पे भी बात है। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, हरूफ मुकत्तआत हैं अलिफ लाम मीम। यानी जब अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा में दुआ सिखाई, एहदिना सिरात अल-मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे दे, उस पे चला दे। तो इसके बाद आप देखते हैं सूरह बकरा भी अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हो रही है, सूरह आले इमरान भी अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हो रही है। यानी अब इसके बाद क्या हमें बताया जा रहा है कि देखो अपनी अकल को तुम सबमिट करो पहले। ये हरूफ हैं जिनका माना तुम नहीं जानते, हालांकि ये तुम्हारी ही वोकैबलरी के हरूफ हैं। ये अलिफ लाम मीम अल्फाबेट्स हैं, तुम्हारी वोकैबलरी के हैं ना, तुम इनको बोलते हो, इन्हीं से अल्फाज बनाते हो, लेकिन तुम इनका माना नहीं जान पा रहे। तुम बताओ कि इसका माना क्या है? अल्लाह के यहाँ हर एक लफ्ज का जो भी कुरान में आया उसका कोई ना कोई माना है, तो इसका माना क्या है आप फिगर आउट नहीं कर पाते? कितना भी जोर लगा ले नहीं समझ में आता। हाँ, हवा में तीर चलाते रहें, अकल के घोड़े दौड़ाते रहें, मतलब ये होगा, शायद ये होगा, शायद ये होगा, लेकिन कोई चीज भी ऑथेंटिक नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें फिर एतराफ करना चाहिए कि तुम सब कुछ नहीं जानते, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया। और इस एटीट्यूड के साथ तुम इस किताब की तरफ आओगे तो तभी यहां से हिदायत पा सकोगे। अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ आते ना, हमें तो सब कुछ पता है, मैं तो सब जानती हूं, मुझे तो पहले ही सब पता है, तो फिर यहां से कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। तो पहले क्या करना है, अपने दिमाग को एम्प्टी करें और ये एतराफ करें, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे घुटने टिकवा दिए गए ना, अलिफ लाम मीम से ही इंसान को ये बावर करा दिया गया, रियलाइज कराया गया, तुम्हें नहीं पता, अल्लाह को पता है। फर्स्ट थिंग इज कि आप ये एतराफ करते हैं, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है, ठीक है, फिर ही आगे बात शुरू होगी। और अगर ये ही रियलाइज नहीं किया और अपने आप को अकले कुल समझाए ना, मुझे पता है, मैं बहुत जानती हूं, मैंने पीएचडी की, मैंने मास्टर्स किया, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, तो फिर यहां से कुछ पा नहीं सकते। तो इसके लिए तैयार हैं आप कि अलिफ लाम मीम पे ही आप सरेंडर करते हैं, गिव अप करते हैं, हाथ उठा दे, मुझे नहीं पता, अल्लाह तुझे पता है। अगर रेडी हैं तो फिर आगे हम चलेंगे, तो फिर आप सीखेंगे भी। और अपने इल्म को ही आप काफी समझते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो आते भी हैं कुरान को सीखते भी हैं, लेकिन उसके बाद रवैया क्या होता है, हमें तो पहले ही पता है, हमें तो सब पता है, हम तो जानते हैं। तो वो आप जानते हैं तो फिर आप क्या लेंगे? देखिए, आप किस बर्तन में कोई चीज भर सकते हैं जो खाली होता है, और जो पहले ही भरा हो उसमें कुछ भरने की गुंजाइश नहीं होती। जो इंसान कहे मुझे पहले ही सब कुछ आता है, उसको क्या सिखाएंगे? बच्चा आपके सामने बैठे और कहे कि आप मुझे क्या सिखाएंगे, मुझे तो पहले ही सब कुछ आता है, तो बात तो वहीं खत्म हो जाती है। और जिस दिन हमने अपने आप को एम्प्टी किया ना, खाली किया कि मैं अब तैयार हूं ये इल्म लेने के लिए, उस दिन ये इल्म आपके अंदर आएगा। तो पहले खाली करें अपने अंदर को, तमाम किस्म के तासुबात निकालें, तमाम किस्म की इल फीलिंग्स निकालें, और इस बर्तन को खाली करके फिर आएंगे जैसे एक फकीर होता है कि अल्लाह मैं नहीं जानती, अलिफ लाम मीम पे ही मुझे पता चल गया, अल्लाह मैं नहीं जानती, अल्लाह आप जानते हैं, आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताएं हिदायत क्या है। ठीक है, तो अलिफ लाम मीम से हम ये सीख लें, बाकी हमें इसकी तावीलात करने की जरूरत नहीं। अलिफ का माना क्या, लाम का माना क्या, जिस चीज का माना अल्लाह ने नहीं बताया तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन का फायदा भी क्या। कोई भी चीजें, कोई कह दे अलिफ से अल्लाह, लाम से पता नहीं कुछ और, मीम से मोहम्मद, तो देखिए वो तो उनके अपने आइडियाज हो सकते हैं, कोई भी चीज ऑथेंटिक थोड़ा ही है। इल्म सिर्फ यानी वो है जो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि ये ऐसे है, बाकी तो फिर हमारे अपनी सोच हो सकती है। आगे वही आयत है जो हम आयतल कुर्सी के आपने शुरू में पढ़ा था, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुल हय्युल क़य्यूम, वहां पे हमने बहुत डिटेल में इसको देखा था कि इसका माना क्या है। जिसने नहीं वो लेक्चर सुना वो जरूर उस लेक्चर को सुने। अल्लाह, अल्लाह कौन है? ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला का तारुफ ये है। अब आप थोड़ा थोड़ा इस चीज को भी सोचते रहें कि एक ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि अल्लाह है लेकिन ईसा भी खुदा है, या ईसा अल्लाह का नाउजु बिल्ला बेटा है, ऐसी बात करें तो ला इलाह इल्ला हुआ। इलाह कौन होता है? जो काबिल वो इबादत के, अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, ला इलाह जब आप कहते हैं तो लाए नफी जिन्स इसको कहते हैं, यानी पूरी जिन्स की नफी कर दी, चाहे वो जानदार है, चाहे वो बेजान है, चाहे वो इंसान है या पत्थर है या शजर है या हजर है, जो भी है, कोई भी चीज, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो जिन्नात है, कोई भी नहीं इबादत के लायक। तो सबसे पहले तो नफी की सबकी, फिर उसके बाद इल्ला हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी ला इलाहा और इल्ला के बाद जो बात आती है, तो इससे पता चलता है कि यानी सिर्फ और सिर्फ ये बात है, बाकी पिछली सारी बात की नफी हो गई। तो कोई इला है ही नहीं सिवाय उसके, उसके किसके? अल्लाह के। अल हई अल कयूम, वो हई है और कयूम है। एक बहुत दिलचस्प बात है इस आयत के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इस्मे आजम जो है वो सूरह आले इमरान और सूरह बकरा और सूरह तौहा में है। तो जो सिमिलैरिटीज निकाली उलमा ने, तो ये आयत निकलती है सूरह बकरा में भी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है, और सूरह ताहा में एक आयत है जिसमें भी अल हय्युल क़य्यूम है। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है कि हय और क़य्यूम यही इस्मे आज़म। और आपको पता है इस्मे आज़म के जरिए जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। बदर के मौके पर जिस वक़्त के कुफार के आमना सामना हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में दुआ क्या थी? या हय्यू या क़य्यूम बि रहमतिका अस्तगीस। ठीक है, और ये यानी अल्लाह ताला के अस्मा, इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पुकारा था। तो अल हई कौन है? वो जो जिंदा जात है, यानी उसके ऊपर कोई मौत नहीं, कोई ऐसा वक्त नहीं था जब वो नहीं था, वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, मौत उसके लिए नहीं है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे वो कोई रसूल है, नबी है, फरिश्ता है, जिन है, कोई भी है, एक सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जिसके ऊपर मौत नहीं है। मौत तो उसकी मखलूक है, मखलूक खालिक को कैसे दे सकती है, उसने तो मौत को खुद पैदा किया हुआ। तो इसलिए ये बात को समझ लें कि जब मौत उसकी मखलूक ही है तो मखलूक उसको कैसे आ सकती है, सोचे। तो वो अल हई है, ये अल्लाह की सिफत है सिर्फ, और किसी की नहीं हो सकती। तुम ईसा अलैहि सलाम को खुदा कहते हो, ईसा अलैहि सलाम तो है ही नहीं, उनको तो मौत आनी है, अभी तो वो जिंदा है लेकिन उनको मौत आनी है, और एक वक्त था कि वो नहीं थे। और अल कयूम, और अल कयूम क्या है? अल कयूम जो खुद भी कायम है और दूसरों को भी कयाम देता है, कायम रखता है, यानी अगर आसमान कायम है तो इसलिए कि अल्लाह ने उसको कायम रखा हुआ है, जमीन कायम है तो इसलिए कि अल्लाह ने उसको कायम किया हुआ है, हम कायम है, हम हमारी हस्ती चल रही है तो इसलिए कि अल्लाह है जो चलाने वाला है। यही बात, यानी जो सस्टेनर है, मेंटेनर है, जो केयर करता है, जो थामने वाला है, और वो थामने वाला ऐसा है कि जिसको ना नींद है ना ऊंग है, वो जिंदा है, क्योंकि नींद और ऊंग भी जो है ये भी मौत की ही यानी बहने कह लो, जैसे वो कहते हैं ना नींद भी मौत की बहन है, तो उसको नींद नहीं आती, ऊंग नहीं आती, वो जिंदा है। और ये जो नींद और ऊंग है ये मखलूक की सिफात है। आप खुद सोचें, आप ड्राइविंग करते हैं, आपको अगर जरा देर को ऊंग आ जाए तो क्या होगा, गाड़ी का क्या होगा, वो तो कहीं जाके टकरा जाएगी। जरा देर को भी आप स्टेयरिंग के पीछे बैठे हुए आप सो गए अगर, तो और सोचें ये कायनात का चलाने वाला अगर उसको ऊंग या नींद आ जाए तो उसकी तो मखलूक का क्या हाल हो। वो अगर सोने लगे करोड़ों करोड़ों साल से, पता नहीं कब से ये कायनात चल रही है, वो अगर सो जाए या उसको ऊंग ही आ जाए, इतना बारीक निजाम है, इस कदर सेंसिटिव निजाम है कि जिसकी एक एक चीज कैलकुलेटेड है, तो ये तो सब तबाह हो जाए। और वो नींद और ऊंग से पाक है, यानी जिंदा एक होना, और एक ये कि उसकी हयात ऐसी है कि जिसमें कोई इस चीज का भी शायबा नहीं, मौत तो दूर की बात है, नींद ऊंग तक नहीं है उसको। तो अब हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कैसी जात है, यहां से उसका एक तारुफ हमें मिला, और यहां से हमें ये भी पता चला कि हम जब सवाल करें, दुआ करें, मांगे तो हई और कयूम से मांगे, हम हई को छोड़ के, जिंदा को छोड़ के मुर्दों से जाके मांगते हैं, मुर्दों पे नजरें लगाते हैं, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। जो आप वजूद भी नहीं रखते, जिनको मौत आ गई उनसे हम उम्मीदें लगाते हैं। तो इकबाल ने कहा था ना, बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, और किसको कुफर कहते हैं फिर, और किसको कुफर कहते हैं कि उनसे उम्मीदें हैं खुदा से ना उम्मीदी। इसलिए पता चलता है हमें कि हई और कयूम से ही सिर्फ सवाल करना है। अब इसके अंदर क्या आ गया, तौहीद आ गई, ला इला इल्लल्लाह इसके अंदर आ गया, जो रूट है हमारे दीन का, हमारे अकीदे की बुनियाद है। और याद रखें ये मामूली बात नहीं है, हम ला इला इल्लल्लाह हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हम तो कहते रहे हैं तो सुनते रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या आपको पता है कि ये पूरी जिंदगी को बदल देने वाली चीज है, ये एक कलमा जिसके ऊपर कुफर और इस्लाम की जंगें हुई, जिसके ऊपर वो काफिर इतने स्टबन हो गए कि उन्होंने कहा ये नहीं हम बोल के रहेंगे, बस ये कलमा नहीं हमने कहना, उनका यही प्रॉब्लम था ना, बाकी तो अभी अहकामात उतरे ही नहीं थे। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं करना, इलाह है अल्लाह लेकिन उसके अलावा और भी है, ये था उनका प्रॉब्लम। ये नहीं था कि वो कहते थे हम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसके अलावा भी हैं ये, लेकिन जब कह दिया ला इलाहा तो खत्म ही हो गई, सबकी बात खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा कलमा है, ये ऐसे ही नहीं इसके बारे में कहा गया कि एक पलड़े के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए और दूसरे में जमीन और आसमान और सारी इसकी चीजें रख दी जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा वजनी होगा, ये इतना बड़ा कलमा है हमने तो जाना ही नहीं। तो ये तो पूरी जिंदगी के ऊपर इतने गहरे असरात छोड़ता है, इसलिए कि ये इंसान को सब गुलामियों से निकाल देता है और एक अल्लाह की गुलामी के अंडर ले आता है। ये अकीदा वो है जो इनकलाब ले आता है जिंदगी में, पूरी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर देता है, इसलिए कि इंसान एक नया इंसान बन जाता है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, वही मेरा खालिक है, वही मेरा राजिक है, वही मेरा पालने वाला है, मैंने मदद चाहनी है तो उससे, मैंने दुआ करनी है तो उसके आगे, मैंने सजदा करना है तो उसके आगे। ये अकीदा गैर अल्लाह के आगे झुकने से इंसान को निकाल देता है, उस गैर अल्लाह के आगे नहीं इंसान झुक सकता, सारे गैर अल्लाह से उम्मीदें तोड़ देता है, सिर्फ एक अल्लाह से उम्मीद लग जाती है। वो फिर किसी और का निजाम नहीं कबूल करता, किसी और का कानून नहीं एक्सेप्ट करता, वो कहता है कानून होगा तो सिर्फ अल्लाह देगा कानून। वो फिर करोड़ों में भी अकेला हो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह डंके की चोट पे, अल्लाह की मानूंगा और उसके मुकाबले में और किसी की नहीं मानूंगा, अल्लाह का कानून चलेगा, उसका निजाम चलेगा, उसके उससे मैं अखलाक सीखूंगा, अल्लाह मुझे सिखाएगा। तो आज तो गैरों से हम एटिकेट सीखते हैं ना, लेकिन यही फर्क होता है एक रब्बानी में और एक रब को छोड़ देने वाले में। ठीक है, तो फिर इंसान सारे मामलात में, चाहे वो इंडिविजुअल लाइफ की हो चाहे वो अपनी सोसाइटी में हो, सब में अल्लाह की तरफ देखता है, उसकी नजरें हर वक्त अल्लाह की तरफ होती है। अल्लाह ने जिसको अच्छा कह दिया वो अच्छी चीज है, चाहे मेरी अकल माने ना माने, अल्लाह ने जिस चीज को बुरा कह दिया वो बुरी ही है। तो ये अकीदा भी दिल में जड़ पकड़ना चाहिए, और ऐसे ही नहीं दिल में आके जमता, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ले लेने से नहीं जमता, बल्कि इसके लिए हर वक्त हमारी नजर अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, तवज्जो उसकी तरफ होनी चाहिए, तब ये जड़ें गहरी होती हैं। या अब मैं अल्लाह से पूछूं इस मामले में क्या करना, मैं अल्लाह से पूछूं शादियां कैसे करनी है, मैं अल्लाह से पूछूं कि कोई फौत हो जाए तो क्या करना है, मैं अल्लाह से पूछूं कि मुसीबत आए तो क्या करना है, मैं अल्लाह से पूछूं कि कमाई करनी है तो कैसे करनी है, मैं अल्लाह से पूछूं कि मैंने ड्रेसअप होना है तो कैसे होना है, मैं अल्लाह से पूछूं कि मैंने बात करनी है तो कैसे करनी है, मैं अल्लाह से पूछूं मैंने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात रखने हैं तो कैसे रखने, मैं अल्लाह से पूछूं कि मेरी फराइज क्या है एज अ वाइफ, मेरे फराइज क्या है एज अ बीवी, यानी एज अ माँ, मेरे फराइज क्या है एज बेटी। हर चीज में उसकी नजर अल्लाह की तरफ होगी, क्योंकि उसने अल्लाह को इलाह बना लिया। भाई कोई छोटी बात है, कोई छोटी बात है ये इलाह बना लेना किसी को, हमने तो ऐसे ही कह दिया ना, हमने कुछ समझा ही नहीं इलाह होता क्या है। जिंदगी का मरकज, सेंटर ऑफ योर लाइफ आपका इलाह है, खुदा बना लेना किसी को, छोटी बात है ये। तो अकीदा तौहीद छोटी बात नहीं है। अगर सिर्फ क्लास में बैठे हुए तवज्जो अल्लाह की तरफ है और क्लास से उठे अल्लाह भूल गया, तो फिर क्या तौहीद है और क्या अकीदा तौहीद है हमारे अंदर, तो जमे नहीं ना, तवज्जो उसकी तरफ नहीं रही। अल्लाह तआला ने तो प्रैक्टिस कराई है, दिन में 5 दफा मेरी तरफ रुक करके खड़े हो, मेरे किबले की तरफ रुक करके खड़े हो, यानी तुम अपना रुख अल्लाह की जानिब कर लो। 5 दफा दिन में ये प्रैक्टिस कराई है, ताकि जब तुम मुसल्ले से उठो तो तब भी तुम्हारा रुख अल्लाह ही की तरफ हो। इसलिए ये चीज इतनी बड़ी है, लेकिन आज तक अफसोस है कि हम जाहिली अकीदे में पले बड़े हैं और उसी को हमने थामा हुआ, हमें पता ही नहीं चला कि कलमा बोल के हमने कितना बड़ा एक इकरार कर लिया। और जब हम समझते इसको अगर, तो हमारी जिंदगियां बदल जाती। कोई जाहिली अकीदा आज बाकी है कि नहीं, या सब मिटा दिया आपने? तो यह जाहिली अकीदा, एक एक की सिर्फ बात करूंगी, वैसे तो बेशुमार है, सिर्फ एक की बात करती हूँ आज। मटीरियलिज्म क्या है? मादा परस्ती, मादे को पूजना क्या है? कि अल्लाह ताला ने तो क्या बताया कि जात पात नस्ल रंग जुबानी, ये सब इस चक्रों में नहीं पड़ना, कोई किसी से अरबी ना अजमी से ऊपर है, ना अजमी अरबी से ऊपर है, ना काला गोरे के ऊपर है, ना गोरा काले के ऊपर है। इज्जत है तो सिर्फ तकवा वाले की है। लेकिन मादियत परस्ती ने क्या सिखाया कि हर इंसान को तोला पैसा देख के, उसका रंग, उसकी बरादरी, उसका कबीला, उसका स्टेटस, उसकी गाड़ियां देख के, उसके घर देख के, उसका बिजनेस देख के, तब उनसे मुलाकातें करेंगे, तब उनसे मिलना जुलना रखेंगे। ऐसे ही थोड़ी हम हर एक से मिल लेते हैं। आप किस तरह तोलते हैं लोगों को, सच बताइएगा। जाहली अकीदे के असरात हैं अभी तक या नहीं? तो जाहिलियत को निकालना है अपने अंदर से। ठीक है, जो मादा परस्ती है ना, वो खुद खुदा फरामोशी है, अल्लाह को भूल जाना है। आज खुदा पैसा है, अल्लाह को खुदा नहीं बनाया, पैसे को बनाया, पैसे को हम पूजते हैं। इसी वजह से हमारी प्रायोरिटीज देखें, हमारे शौक देखें, हमारी लगन देखें किस तरफ है, हम भाग भाग के किधर को जाते हैं। खुद हर एक बंदा फैसला कर सकता है। तो ये छोटी बात नहीं मेरी बहनों, ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, बहुत बड़ी बात है। अबू जर फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास एक आने वाला आया मेरे रब की तरफ से, यानी कौन, मुस्लिम में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उसने मुझे खबर दी, या फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने मुझे बशारत दी, ये हदीस के अल्फाज, कि जो मेरी उम्मत में इस हाल में मरेगा कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराया हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो अबू जर फरमाते, मैंने कहा या रसूलल्लाह, अगरचे वो जिना करता हो, अगरचे वो चोरी करता हो। आपने फरमाया हाँ, अगरचे वो जिना करता हो, अगरचे वो चोरी करता हो। क्या मतलब है? यानी जो तौहीद के ऊपर इस दुनिया से रुखसत हुआ, ख्वाह वो कबीरा गुनाह का भी मुर्तकिब होगा, एक ना एक दिन वो जन्नत में दाखिल होगा। तो पता होना चाहिए तौहीद क्या है, पता होना चाहिए शिर्क क्या चीज है, ताकि शिर्क से बच सके और सच्ची तौहीद के ऊपर आ सके। और जब तक ये पता ही नहीं, तो शिर्क जिंदगी में आया हुआ पता ही नहीं शिर्क क्या है। मुसलमान खुद को कहते हैं, अब देखें हम भी, मैंने आपको वाकया सुनाया कि वो ईसाई वफद ने क्या कहा, हम तो पहले से ही मुसलमान, हमें आप क्या मुसलमान करेंगे, हम तो पहले ही हैं मुसलमान। ना आपने फरमाया नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तो ये तो नहीं कि हम कहें हम मुसलमान हैं लेकिन हम शिर्क के काम कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने ईमान किस पे रखा है ये पता ही नहीं। और आज हमारी मुसलमान आबादी में बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनको नहीं पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। तोते को रटा दें या एक 80 साल का बूढ़ा कह रहा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है, दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे तोते को कोई समझ नहीं, इसी तरह एक बूढ़ा आदमी, उसने 80 साल जिंदगी गुजार दी, उसको यही नहीं पता ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। तो सीखें ला इलाहा इल्लल्लाह को, सीखें, समझें।